हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 41। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना रूप विश्वरूप दिखा चुके हैं और अर्जुन उस विश्वरूप से इतना प्रभावित हो गया है कि भगवान को आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से प्रणाम कर रहा है और इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि संसार में जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है, वो सर्व कारणों के कारण है और भगवान ही एकमात्र पूजनीय है। अब उसको ये रियलाइज हो रहा है कि इतने प्रभावशाली भगवान, इतने सुप्रीम पर्सनालिटी के भगवान हैं, उनको आज तक मैंने पहचाना नहीं, मैं उनको फ्रेंड समझता था और न जाने उन इस फ्रेंडशिप में पता नहीं किस किस तरह की मैंने ऐसी हरकतें की होंगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो आज भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन टेक्स्ट नंबर 41 और 42 में कहते हैं, बहुत ही प्यारे श्लोक है, हमें भगवान से इस तरह कहना चाहिए। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, सखी तिमत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहा सार्थम असक्त कृतोसि, विहारशय्या सनभोजनेषु, एकोथ वाप्यच्युत तत्समक्षम, तत्क्षमाये त्वा अहम प्रमेयम्। अर्जुन कह रहे हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, यानी कि आपको अपना मित्र मानते हुए, सखेति मत्वा मतलब आज तक मैंने आप को अपना फ्रेंड समझा है ना, इसलिए मैं आपको कैसे संबोधन कैसे करता था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हट पूर्वक अक्सर उनको बोला हे कृष्ण हे यादव हे सखे जैसे संबोधन से पुकारा है। क्यों पुकारा है, अजानता महिमानं तवेदं, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था इसलिए ऐसा किया, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मैंने मूर्खता में या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, अब तो पता चल गया है कि ये सब आपको नहीं कहना चाहिए, तो फिर क्या करना है, भगवान को कह रहे हैं, यच्चा वहा सार्थम असत्कृतोसि, जो भी मैंने इस तरह के व्यवहार किए हैं जो कि नहीं करने चाहिए, उसके लिए कब कब किए, विहार शैया सनभोजन, विहार करते हुए जब हम लोग है ना एक साथ बैठते थे मस्ती करते थे और शैयासन एक ही बिस्तर पर सब जब सोते थे और साथ साथ में जब भोजन करते थे भोजन ईशु, तो फिर एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम, क्योंकि जितने भी मैंने इस तरह की एक साथ जब हम लोग करते मिलते थे तो फिर जो जो काम किए हैं, कभी कभी अकेले में तो आपके साथ इस तरह किया और कभी कभी तो बहुत सारे लोग भी होते थे तत्समक्षम, बहुत सारे लोगों के समक्ष भी मैंने ऐसा किया, अब क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता, तत्क्षमाये त्वाम हस, मैंने जो भी आज तक किया है आप उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था और मुझे बिल्कुल आप कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आप इतने बड़े विश्वरूप दिखा सकते हो और आप इतने महान हो, मुझे कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ, मैं तो आपको अपना प्रेमी मित्र समझता था और है ना बस इसी तरह जैसे फ्रेंड्स के साथ है ना हम लोग एटीट्यूड करते हैं वही व्यवहार मैंने आपके साथ किया है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखे जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए भी, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट स्वरूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले उनके अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि वो भूले नहीं हैं, अब उनको दिव्य दृष्टि मिल गई है, सामने भगवान है, विश्व रूप दिखा रहे, लेकिन उसको वो पुराना वाला याद आ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बोले अभी मैंने, क्योंकि तभी मैं बेवकूफ था, मुझे खबर नहीं थी ना आपके बारे में, अब मुझे पता चल गया है कि आप कितने महान हो, तो मैं वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे उन सब अयोग्य कारणों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात नहीं था कि कृष्ण ऐसा विराट स्वरूप धारण कर सकते हैं, यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे कृष्ण, हे मेरे मित्र, हे यादव जैसे संबोधनों से के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की है। हालांकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मित्र के रूप में भी बता देते कभी कभी कि मैं कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ कर, मतलब, लेकिन कभी सीरियस लिया नहीं अर्जुन ने, लेकिन जैसे रूप दिखाया अपना। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्रता की भूमिका निभाते रहे। आज तक कृष्ण ने कभी उसको ये नहीं बोला कि मैं इतना महान हूँ, आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव है क्या, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजामि हम, तुम मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करोगे मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। यानी कि अगर तुम मुझे अपना मित्र समझोगे तो मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा, अगर तुम मुझे अपना बच्चा समझोगे तो मैं तुम्हारा छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा, और अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा लवर बन जाऊंगा। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट स्वरूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। यानी कि हम चाहे कुछ भी कहीं भी चले जाएं, कोई भी स्वरूप धारण कर लें, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध तो रहता ही है। उसे हम अगर भूल जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन संबंध टूटता कभी नहीं है। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न तत्स्वमोत्थतभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिमा प्रभाव। इतना अच्छा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वत्समोत् यानी कि न त्वत् समोस्त्य का मतलब होता है आपके समान कोई नहीं है इस संसार में, कोई कैसे हो सकता है भगवान श्री कृष्ण के समान। तो अर्जुन उस बात को भगवान के सामने कह रहे हैं, न त्वत् समोस्त्य भ्यधिकः कुतोऽन्यो, आपके समान तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो फिर आपसे बढ़कर को किसी का होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी भला तीनों लोकों में, सारे तीनों लोकों के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब आपसे उत्पन्न हुए हैं, आपके आश्रय में हैं, आपके अंदर कंट्रोल हैं, तो आपके समान कोई नहीं है, तो भला आपसे बढ़कर कैसे हो सकते हैं। पितासि लोकस्य, यानी कि आप पूरे जगत के पिता हो। यानी अर्जुन ने कहा, आप इस चराचर चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूजनीय महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार करके अब बोला कि बस अब आपसे बढ़कर आपके समान कोई नहीं है, तो बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए सरेंडर करने योग्य केवल कृष्ण ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ही ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। मैंने आपको बताया था ना, श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में बताया गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असुरयः, कि ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और बाकी सबको ज्ञान मिला है उनके थ्रू। जैसे वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, नारद जी ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेदव्यास जी को, तो ब्रह्मा ने दिया, बट ब्रह्मा को किसने दिया? कृष्ण ने दिया। तो आदि गुरु यहाँ पर बताया, अर्जुन कहते हैं गुरुर गरियान, यानी जितने भी गुरु हैं उनमें सबसे ज्यादा महान, यशस्वी और महिमामय आप हैं। और वेदों का, ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी की प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने की, होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही परफेक्ट है, क्योंकि वही ज्ञान के, ज्ञान जानने योग्य वही हैं, ज्ञेय वही हैं और ज्ञान का मकसद भी वही है, तो वही बता सकते हैं ना कि वास्तव में ज्ञान। हम क्या समझते हैं कि जिसने ज्यादा हाई एजुकेशन हासिल कर ली है वो ज्ञानी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसको ये पता चल जाता है कि आप कौन हो, अगर आप आत्मा हो तो आत्मा क्या है, आत्मा आप, आपको पहले ये खबर पड़ जाए कि आत्मा क्या है, आत्मा भगवान का अंश है तो उसको करना क्या है, भगवान की भक्ति करनी है। और जिस मतलब आत्मा को जिस जिस शरीर के अंदर कैद कर दिया गया है वो सारे काम उनको फर्ज समझ के करने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मत है कि ये ज्ञान है। तो जो इन गुरु, भगवान श्री कृष्ण के गुरु परंपरा से आए हैं, जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि इस कलयुग में चार ऑथेंटिक परंपराएं हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय। उनमें से जो तीन संप्रदाय हैं, जैसे कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय, वो यहाँ पर आज उनका प्रचार नहीं होता इस तरह से, वो गुरु शिष्य परंपरा चल नहीं, बस उनके जो भी है ना वंशज वही उन उनमें होते हैं। क्योंकि रुद्र संप्रदाय में क्या होता है कि वो प्रविजिकारी आचार्य नहीं है, जिस तरह श्रील प्रभुपाद ने समग्र सृष्टि के बहुत सारे चक्कर किए और हर जगह पे अपने भक्त बनाए, इस तरह नहीं होता। बस उन्हीं के जो लोग होते हैं वो एक हवेली में जाते हैं और प्रसाद खाते, प्रचार नहीं होता। और इसके अलावा श्री संप्रदाय, वो सिर्फ भारत में एक जगह जहाँ पर श्री रंगम है वहीं उसी स्थान में वहाँ के लोग हैं जो वहाँ से दीक्षा लेते हैं, बाकी दूसरी जगहों पे नहीं होता प्रचार। और इसके अलावा कुमार संप्रदाय तो इस कलयुग में समझो नहीं नजर आती, लेकिन ये जो ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय जिसके आचार्य वाणी आचार्य अब भी भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद, वेद व्यास, ऐसे करते 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 चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद षट गोस्वामी और आगे जाके जगन्नाथ बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद और उसके बाद श्रील भक्तिपाद, इन सब तक ये परंपरा पहुंची। और अगर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए, कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व नहीं करते, उनको, उनकी बात को हम एज इट इज बता नहीं सकेंगे, और जब एज इट इज नहीं बता सकते तो गुरु कैसे बन सकते हैं। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, इनकी महानता अपरिमेय है, कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई भी उनको पार नहीं कर सकता। श्वेता सूत्र उपनिषद में 6.8 में कहा गया है, न कस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समस्याभ्यधिकः दृश्यते। यानी बहुत ही सुंदर श्लोक है श्वेताशूद्र उपनिषद में कि भगवान श्री कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता है। यानी कि देखने में लगता है कि हमारी जैसे हमारे में हमारे आत्मा में और हमारे शरीर में हमारे मन में अंतर है ना, लेकिन वो पूरे के पूरे परमात्मा है, उनमें इन सारी चीजों में कोई अंतर नहीं है। भले वो सारी चीजें हैं, उनकी इंद्रियां हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे परमात्मा है। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। जो श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का शरीर था, वो यहाँ पर संसार में आया, वो समाप्त हो गया, वास्तव में कृष्ण कोई और है जो गोलोक में रहते हैं या उनकी भक्ति करनी चाहिए, जिनका कोई शरीर नहीं है वो तेज है, वो तेज पुंज है या ब्रह्म है, ऐसा कोई नहीं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो तो लोग मूर्ख हैं, कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। हमारे जैसी स्थूल इंद्रियां नहीं है उनकी, लेकिन वो सब करते हैं, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है ना ही अपूर्ण है। जैसे हमारे इंद्रियों में बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे वो अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम अपनी इंद्रियों से कंप्लीट ना जो चाहते हैं वो कार्य नहीं कर सकते, छोटी चीजों को नहीं देख सकते, बड़ी चीजों को नहीं देख सकते, दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि इतनी सक्षम नहीं है कि हम भूत भविष्य वर्तमान को देख सके, और गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं, ये सब हमारी इंद्रियों के अंदर ये सारे दोष होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों में ना तो कोई दोष है और ना ही कोई अपूर्णता है, ना तो कोई उनसे बढ़कर है ना उनके तुल्य है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष भगवान का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है, श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में कहा गया। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसी श्लोक को है ना, जब तक हम लोग नहीं समझते हैं ना, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई गलती कर सकते हैं। लेकिन जब ये श्लोक समझ में आए, 4.9 बहुत ही सुंदर श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम्। हम क्योंकि भौतिक इंद्रियां रखते हैं, भौतिक सोच रखते हैं, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि जन्म और कर्म, मेरे जितने भी जन्म होते हैं वो, यानी कि जो शरीर लेकर मैं संसार में आता हूँ वो, और जो कार्य करता हूँ, जैसे कुछ लोग भगवान पे आरोप लगाते हैं ना कि ऐसा किया भगवान ने, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब दिव्य हैं। आप मूर्ख हो, आपकी बुद्धि सीमित है, आपकी इंद्रियां सीमित हैं, आप मुझ असीम भगवान को नहीं समझ सकते हो क्योंकि मैं दिव्य हूँ। लेकिन जो परंपरागत गुरु के माध्यम से भगवान को समझ लेता है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो वेत्ति तत्त्वतः। ये तत्त्वतः वर्ड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही 4.34 में कहा था, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। ये तत्व हमें केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, परंपरा से आए हुए महान गुरु और आचार्य जैसे श्री प्रभुपाद जी, वही बता सकते हैं कि भगवान वास्तव में कौन है, उनके जन्म और कर्म कैसे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये डिक्लेयर करते हैं इस श्लोक में 4.9 में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम्, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो किसी तत्वदर्शी से जाकर ये सब सीख लेता है उसके साथ क्या होता है, खाली ये जान लेना कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है और उनके कर्म दिव्य है, वो खाली जो जान लेता है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, उनको क्या पारितोषिक मिलता है, क्या इनाम मिलता है। नेक्स्ट वाली लाइन बहुत ही सुंदर है, भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देवहम्। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग देता है देह, देहम यानी देह। जब वो इस शरीर को त्याग देता है, पुनर्जन्म, पुनर का मतलब होता है दोबारा, जन्म मतलब दोबारा इस संसार में जन्म लेना, नयति कभी भी नहीं लेता। कौन? जो ये जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, वो जब मनुष्य इस शरीर को त्याग लेता है तो पुनर्जन्म कभी नहीं लेता। फिर किधर जाता है? भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, मामेति। वो किधर जाता है? मेरे पास आ जाता है। और मेरे पास एक दफा आ जाता है, यद्गत्वा ना निवर्तन्ति। 15.7 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे पास एक बार आ जाता है उसे तो दोबारा कभी जाने, हम जान तो दे देते हैं मगर जाने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण का ये उसूल है कि जो उनके पास आ जाता है, जो उनसे प्रेम करता है, उनको कभी भी वापस जाने नहीं देते। सोर्जुन हे अर्जुन, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में 4.9 में कि जन और कर्म मैंने जो भी लिए हैं वो सब दिव्य हैं, खाली जो जान लेता है उसे भी इस संसार में वापस पुनर्जन्म और मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है क्योंकि वो मेरे पास आ जाते हैं। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो ये है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेंगे। हम लोगों ने अपने बहुत सारे नियम बना दिए हैं कि हम लोगों को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, हम मनुष्य। लेकिन भगवान ने जो नियम बताए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरा नियम ये है कि कृष्ण कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ दो बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे धर्मों को जो तुमने अपने ना मनोगत से जो धर्म बनाए हुए हैं उनको छोड़ो, मेरी मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ और मेरी शरण में आने के बाद मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। जब पाप नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें बारंबार दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही समस्त ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो भगवान का तो कोई गुरु नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5.142 में इसकी पुष्टि होती है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आरसब भृत्य। एक कृष्ण एक ही, ईश्वर तो एक ही है, गॉड इज वन। हमें ये जान लेना चाहिए, वास्तव में हमारे समाज में सबसे बड़ा अपराध है ना, तो ये है कि भगवान अनेक बना दिए हैं। भगवान अनेक कैसे हो सकते हैं? कृष्ण भगवान है और भगवान एक हो सकता है जिसमें से अनेक अनेक प्रकृतियां। लेकिन आज भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मम्मी से कभी जाके पूछते हैं, मम्मी भगवान कौन है? तो कोई मम्मी बोलती है शिव भगवान है, कोई बोलते हैं गणपति भगवान है, कोई बोलते हैं देवी माता भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, ये कोई कोई तो बोलते हैं कि ये सिद्ध संत भगवान है, ये महात्मा भगवान है। भगवान एक नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु साफ साफ कहते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी जितने भी हैं वो इनके भृत्य हैं, यानी उनके दास हैं। कृष्ण अकेले कृष्ण ही ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 9.10 में, मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम करती है। और प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देशनों के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सर्व कारण कारणम, कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।